दूसरा राजा अध्याय 24, अध्याय 24 पद 2। तब यहोवा ने उसके विरुद्ध और यहूदा को नाश करने के लिए कसदियों, आरामियों, मुआबियों और अमोनियों के दल भेजे। ये यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास भविष्यत वक्ताओं के द्वारा कहा था। देखिए, यहां फिर वही परिस्थिति है। जब इसराइल देश की कमजोरी शत्रुओं को दिखाई पड़ी, तब सभी देशों ने आक्रमण करना आरंभ कर दिया। किसी भी देश के लिए कमजोरी प्रकट करना खतरनाक है, क्योंकि इसे दूसरे देशों को आक्रमण करने में बल मिलता है। यहोयाकीम मर गया और उसका पुत्र यहोयाकीम राज्य करने लगा। इस पुस्तक का ये भाग थोड़ा मुश्किल है। आपके पास यहोआहाज, यहोयाकीम और यहोयाकीन आदि है, जिन्हें समझना कठिन है। यहोयाकीन उसके स्थान पर राज्य करने लगा और उसके समय में नेबुकदनेस्सर ने आकर यरूशलेम को जीत लिया और 10,000 लोगों को बंदी बनाकर बाबुल ले गया। यहां हमें दानियल की पुस्तक पढ़नी होगी। दानियल उन 10,000 बंधुओं में से एक था जो पहले बंदी बनाकर बाबुल ले जाए गए, और वो राजकुमारों में से था। वो दाऊद का संबंधी था। उसे बाबुल ले जाया गया और बाबुल के स्कूल में पढ़ाया गया ताकि वो नबूकदनेस्सर के न्यायालय में सेवा करे। वो बाबुल के राज्य का एक महान पुरुष हो गया और बाद में वो मादी फारस के राज्य का प्रसिद्ध मनुष्य भी बना। और ये आपको दानियल की पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। बाबुल ने सिदकिया को राजा बना दिया, जो 21 वर्ष का था जब वो राजा बना। उसने 11 वर्ष तक राज्य किया और नबूकदनेस्सर से विद्रोह किया। फिर नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर दूसरी बार चढ़ाई की और शहर पनाह तोड़ डाली। उसने मंदिर को तोड़ डाला और आग लगा दी और यरूशलेम के अंदर जितने घर और महल थे उनको भी जला डाला। राजा ने बाबुल के यरूशलेम के घेराव से पहले वहां से रात को भागकर बचने की सोची। वो एक द्वार से निकलकर जंगल में भाग गया, परंतु बाबुल ने उसका पीछा करके यरीहो में उसे जा पकड़ा और वहां सिदकिया के पुत्र उसके सम्मुख मार डाले गए। और जैसे ही उसके पुत्र मार डाले गए, उन्होंने उसकी आंखें निकाली और उसे बंधुआ बनाकर बाबुल को ले गए और वहां जाकर वो मर गया। इसके बारे में यरमिया ने अध्याय 22 में भविष्यवाणी की है कि उसके साथ क्या किया जाएगा, अर्थात उसे अंधा बना दिया जाएगा। उसने कहा कि वो अपने पुत्रों को मरते हुए देखेगा और बंधुआ होकर बाबुल को ले जाया जाएगा, और इस तरह यरमिया की ये भविष्यवाणी पूरी हुई। उन्होंने निर्धनों को दाग की बारी की देखभाल के लिए वहां छोड़ दिया। बाकी लोगों को वे बंधुआ करके ले गए या मार डाला। उन्होंने एक जन गदलिया को उनके ऊपर अधिकारी ठहराया, परंतु कुछ लोगों ने गदलिया के विरुद्ध विद्रोह किया, उसे मार डाला और भयभीत हो गए। उन्हें बोध हुआ कि नबूकदनेस्सर ये सुनेगा तो वो सेना भेजकर हम सबको मिटा डालेगा। इसलिए बचे हुए लोग मिस्र को भाग गए और इस तरह यहूदा की पूरी तरह अंत हो गया। एक राज्य जो शक्तिशाली था और परमेश्वर की शक्ति को जानता था, वरन जिसे परमेश्वर ने बनाया था, जब तक परमेश्वर उनके मध्य था वे मजबूत और विजयी रहे। परंतु जब वे परमेश्वर से दूर हो गए, वे अपने शत्रुओं से हार गए और देश का अस्तित्व खत्म हो गया। यरमिया ने भविष्यवाणी की थी कि वे 70 वर्ष बंधुआई में रहेंगे, और यहां फिर इस समय के इतिहास पर यरमिया की पृष्ठभूमि को जानने की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर अब आप बाबुल की बंधुआई के वृत्तांत में आ गए हैं, अतः आपको यहेजकेल और दानियल की भविष्यवाणियों को देखने की आवश्यकता पड़ेगी और इस समय के इतिहास को समझने के लिए उनको जानना अच्छा है। अब हम यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पहले सैमुअल से लेकर अब तक हम इससे पढ़ते आ रहे हैं। यहूदा के राजाओं के वृत्तांत इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं, परंतु इसराइल के राजाओं का वृत्तांत अधिक नहीं है। हमारे पास इसराइल के राजाओं का इतिहास नहीं है, परंतु जो है वो बहुत ज्यादा या कम अभिलेख है, जो राजाओं के राज्य काल के अभिलेख है। एक तरह से ये पुस्तक शौल से राजा सिदकिया तक के इतिहास को बताती है, परंतु इस पुस्तक में अन्य राजाओं के बारे में भी विवरण पाया जाता है। बाइबल में दिया गया विवरण बहुत ही रुचिकर एवं महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि यदि आप पहला और दूसरा इतिहास की पुस्तक पढ़े, तब यहूदा के राजाओं के इतिहास को पढ़कर आपकी रुचि और भी बढ़ जाएगी। इसलिए आप पहला इतिहास पुस्तक को पढ़ना आरंभ कर दे और साथ में यशया, एहेस्केल, दानियल और यरमिया की पुस्तकें भी पढ़े। परमेश्वर आपको अच्छा समय दे। परमेश्वर आपको शरीर की उस अभिलाषा के बंधन से बचाए जो आपको पतित करके दूसरे मनुष्यों की तरह आचरण करने का कारण होती है। आप ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को पसंद आए। काश आप योशिया की तरह परमेश्वर की व्यवस्था के सम्मुख खड़े हो सके और वाचा बांध दे कि उसकी आज्ञाओं को मानोगे, उसका अनुसरण करोगे और उसकी सेवा अपने पूरे हृदय और आत्मा से करोगे। परमेश्वर आपको अभिषेक करे और शक्ति दे कि जो प्रतिज्ञा आप करते हो उसे पूरा कर सको। यीशु के नाम में आमीन।